ओम शांति। अभी हम सभी बाबा के मुरली सुन रहे थे। एक पॉइंट जो मुझे बहुत टच की वो ये पॉइंट थी कि दुनिया वालों का है हद का वैराग्य और तुम बच्चों का है बेहद का वैराग्य। और बाबा ने उसमें एक बहुत खूबसूरत बात कही कि इस बेहद के वैराग्य के आधार पर तुम बच्चे नई दुनिया की स्थापना करते हो, जो कि बड़ा इम्पोर्टेंट है। दुनिया में लोगों ने कितनी कोशिश की, गांधी जी भी कहते चले गए कि मुझे राम राज्य की स्थापना करनी है, लेकिन वो नहीं कर पाए। पर हम बच्चे कर पाते हैं क्योंकि हम बच्चों ने बेहद के वैराग्य को धारण किया है। तो भी हमारा फर्ज है कि इस बात को थोड़ा सा इलैबोरेट करें, इसको हम बढ़ाएं कि बेहद का वैराग्य बाबा ने किसको कहा है और इसको हमें कैसे जीवन में धारण करना है। तो ये तो रहा मुरली की एक पॉइंट की बात। मुझे कहा गया मैं 10-15 मिनट आप सभी के साथ में थोड़े अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस शेयर करूं। ये हम सभी जानते हैं कि बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो लास्ट में आए हैं या पहले भी आए हैं, तो हर एक की ये इच्छा रहती है कि लास्ट सो फास्ट हम जाएं और हम भी फर्स्ट में आ जाएं। तो मैंने देखा कुछ लाइफ के एक्सपीरियंसेस, जब मैं सोच रही थी तो मेरे मन में जो 2-3 एक्सपीरियंसेस टच हुए वो मैं आपको बताती हूँ कि कैसे हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। एक तो मैंने देखा कि यज्ञ को हम अपना समझें, यज्ञ को हम अपना समझें कि मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। जैसे देखो, घर परिवार के अंदर बड़ा बेटा होता है या बड़ी बेटी होती है तो वो क्या समझती है, क्या समझती है कि मेरा घर है, मेरे को अपने माँ बाप का राइट हैंड बनकर उसको सपोर्ट करना है। तो कई बार हम कहते हैं कि हम लोग इतने बिजी रहते हैं, हमारे पास टाइम नहीं होता है, हम कर नहीं सकते हैं। ये ऐसी बात नहीं है, ये माइंडसेट की बात है। मुझे याद आता है कि बाबा ने जो कहा है कि हम बाबा के यज्ञ में सहयोगी बन सकते हैं, अपने को रिस्पॉन्सिबल समझ सकते हैं, क्योंकि चलते फिरते हम मनन कर सकते हैं। अब ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम चलते फिरते अपने युगल से ज्यादा बात कर रहे हैं, अपने फैमिली के साथ यहाँ रहते हुए भी ज्यादा कनेक्टेड है, या हम अपने में रहते हुए बाबा के साथ ज्यादा कनेक्टेड है। भले हम दुनिया में कितने भी बिजी प्रोफाइल वाले ना हो, कई लोग कहते हैं कि हम लोग नई रेगुलर क्लासेस में नहीं आ सकते, हम नहीं कर सकते। मैं आपको मिसाल देती हूँ अपने परिवार का कि हमारे परिवार में यहाँ यज्ञ के अंदर बहुत कॉन्फ्रेंसेस के अंदर चीफ गेस्ट के रूप में आते हैं। और डॉक्टर एमडी गुप्ता फैमिली का, जिन्होंने इन्होंने जिक्र किया, जो काफी मेहनत के बाद ज्ञान में निकले थे, पर मैंने देखा कि जब उन्होंने ज्ञान की पकड़ कर ली और उसको समझ लिया तो वो बहुत अच्छे से यज्ञ के अंदर चल पाए। और जब वो चले तो वो कहते थे, पूरी फैमिली, डॉक्टर एमडी गुप्ता, डॉक्टर मंजू गुप्ता जो गायनोकोलॉजिस्ट है, उनका बेटा डॉक्टर मोहित जो एक पंत हॉस्पिटल में सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट है और पार्लियामेंट हेल्थ एनेक्सी में भी वो अपनी सर्विसेज देता है, तो बहुत एसोसिएशंस के साथ एसोसिएटेड है और बहुत उसने गोल्ड मेडल्स भी लिए हुए। और उनकी डॉटर है मोनिका, तो वो भी इंटरैक्टिव बीज एक उनकी कंपनी है जिसमें उसके पास 70-80 लोग का स्टाफ काम करता है और वो उसके मैनेजिंग डायरेक्टर है। तो मैं समझती हूँ इससे ऊंचा प्रोफाइल तो कोई नहीं होता है दुनिया के अंदर। पर फिर भी मैंने देखा कि जिस दिन से वो ज्ञान में चले, चाहे वो बीमार हो या कुछ भी हो, बाबा के घर में जाके मुरली जरूर सुननी है। अब आप समझ सकते हैं कि एक लेडी जो गायनोकोलॉजिस्ट है और इस बैकग्राउंड की है, बच्चों को खुद वो भोजन बना करके खिलाती रही है। इससे बच्चों के, कोई छोटे छोटे थे बच्चे जब हम उनको गोदी में लेकर यहाँ आया करते थे, तो मैंने देखा कि माँ बाप ने जब उनको इस तरह से सस्टेन किया तो उनके इतने अच्छे संस्कार डेवलप हो गए कि वो बहुत अच्छे ज्ञान में निकल करके आए और अपना जीवन बाबा के प्रति ही रखा। तो परिवार में रहते हुए उन्होंने बाबा के जो नियम है, जो प्रिंसिपल्स है, उनको पूरा अपनाया। ये बहुत जरूरी है। हम लोग आते हैं, हमें मधुबन जाना है, भाई मधुबन जाने का पर्पस क्या है? ये हमारा स्कूल है, स्कूल और यूनिवर्सिटी के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। जब तक हम जुड़ते नहीं हैं स्कूल या कॉलेज से या बड़ों के साथ में, तो क्या होता है कि हमारी इंटेलेक्ट शार्प नहीं बनती है। और जो यहाँ पर बातें बताई जाती हैं, वो गहराई से हमारे अंदर में नहीं घुसती हैं, जो हम महसूस करते हैं। तो आएंगे तो हम ये तो कहते हैं कि एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लगा, पर मैंने अपने जीवन के लिए क्या धारणा ली यहाँ से, तो इस पर अटेंशन देना बहुत जरूरी है। तो मैंने देखा कि वो लोग चारों क्लासेस भी करते हैं और अभी ऑनलाइन के दौरान उन्होंने अपने सेवाएं करनी शुरू की, जिसमें 300 स्टूडेंट्स को निकाला और 4-5 क्लासेस लेते हैं घर से रहते हुए, और जबकि अपना प्रोफेशन अलग है, प्रोफेशन अलग है। और डॉक्टर मोहित ऑल ओवर दी वर्ल्ड घूमते रहते हैं सेवाओं के लिए। डॉक्टर एमडी गुप्ता सवेरे अमृत वेला मोनिका दी कराती है, फिर वो मुरली सुनाते हैं अव्यक्त मुरली, फिर डॉक्टर मंजू गुप्ता 2 क्लास लेती हैं, फिर अपना वो हॉस्पिटल जाती हैं और हॉस्पिटल जा करके वहां पे एक गर्भ संस्कार वाला प्रोजेक्ट है, उसके कितने लेक्चर्स के लिए सेंटर्स पे इधर उधर भागती रहती हैं। तो ये सिर्फ अपने सिस्टम को ऑर्गेनाइज करने की बात है। इसी समय के अंदर कोई व्यक्ति 24 घंटे के अंदर एक बहुत बड़ा वर्ल्ड लीडर बन जाता है और एक व्यक्ति भरी ढोता रहता है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि समय का हम सदुपयोग नहीं कर रहे, अपने आलस्य के वशीभूत हम कर नहीं सकते, हम आ नहीं सकते, ये सब बहानेबाजी की फाइलें हैं और ये मेंटल ब्लॉकेजेस हैं, जो हमें बाद में खून के आंसू बहाने पड़ेंगे कि हमने देखा, सोचा, किया, लेकिन हमने नहीं किया। तो इसलिए अगर हम आना चाहते हैं नजदीक, तो तन से सेवा जरूर करो बाबा के यज्ञ में, मनसा सेवा जरूर करो, इससे मन स्ट्रांग बनेगा। तन से सेवा करेंगे तो हेल्थ बहुत अच्छी होगी। धन जितना लगा सकते हैं, एक दूसरे को मत देखो कि वो 10,000 लगाता है तो मैं 8,000 ही लगाऊं, नहीं, जितना लगा सकते हैं उतना लगाओ, क्योंकि लेट आए हैं तो कैसे अपने समय को सफल करेंगे, अपना लास्ट सो फास्ट भाग्य बनाएंगे। मैंने बैंक ऑफ इंडिया में 20-25 साल काम किया। मैं क्या करती थी, बाबा की जब बनी तो मैंने एक अपना अलग से अकाउंट खोल दिया। मैंने कहा ये अकाउंट बाबा के लिए है। उससे मुझे जो मेडिकल एड मिलती थी तो मैं क्या करती थी, सारा उसमें ट्रांसफर कर देती थी और कुछ बाबा के यज्ञ के लिए 1/4 शेयर सैलरी का उसमें डाल देती थी। तो जिससे मुझे रहता था कि मुझे ये ना लगे कि ये मेरा पैसा है, बाबा का पैसा है, तो जब सेंटर पे जैसे जरूरत होती थी तो वो निकाल करके, क्योंकि उन दिनों पहले की मैं बात कर रही हूँ 70s, 80s, 90s में, सेंटर्स की पोजीशन इतनी अच्छी नहीं हुआ करती थी, बहुत फाइनेंशियली टाइट होते थे हम लोग सेंटर्स पे। तो मैंने देखा कि इससे मुझे भी अच्छा लगता था और साथ में मुझे लगता था कि मेरा भाई डॉक्टर है तो उससे मुझे ट्रीटमेंट मिल जाता है, तो ये जो मेडिकल एड मुझे मिलती है ये मेरी नहीं है, ये बाबा की है। और कुछ वैसे ट्रांसफर किया तो उससे क्या होता था कि वो चीज सुचारू रूप से चलती रहती थी। और मैं हमेशा सोचती थी कि देखो, कोई घर में फंक्शन आता है, कोई सेलिब्रेशन आता है, तो हम हमेशा उसमें पार्टिसिपेट करने का सोचते हैं, तो उस समय हमारे पास धन कहाँ से आ जाता है। लेकिन जब बाबा के लिए करने की बात होती है तो ये मन हमेशा हमें रोकता है। तो इसलिए किसी ना किसी तरह से जैसे भी भाग्य जितना ज्यादा बना सकते हैं, क्योंकि बाबा ने तन कहा, मन कहा, धन कहा, समय, अगर बुजुर्ग हैं तो सेंटर पे जाके बैठ जाते हैं, आने वालों को हम लोग अपने अनुभव सुनाते हैं, तो वो भी एक बहुत अच्छी सेवा कर सकता है। तो इसलिए किसी ना किसी तरह से सेवा पर हम ध्यान दें, सहयोग, अगर कोई राय सलाह दी जाती है तो कई भाई बहन होते हैं उसको बहुत अच्छे से अडॉप्ट करते हैं, लेकिन कई नहीं करते। तो जो नहीं करते हैं उनको हम लोग क्या करें, बाबा के घर के नजदीक लाएं। तो ये जो 4-5 तरह के सहयोग हैं, ये हमको बहुत आगे बढ़ा देते हैं। दूसरा मैंने अपने लाइफ में एक्सपीरियंस किया कि हम लोग जितना अपने आप को बाबा के यज्ञ में ऑफर करते हैं, किसी भी तरह से मेरे लायक कोई सेवा हो तो बताना, तो उससे क्या होता है, हम किसी के दिल पे चढ़ जाते हैं। जैसे घर में भी बच्चा अगर कोई कहता है कि पापा आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, हम बैठे हैं, तो माँ बाप निश्चिंत हो जाते हैं। और जब कोई ऐसी बात आती है तो वो उस बच्चे को याद करते हैं कि बेटा ये प्रोग्राम है, ये सेवा है। तो मैंने देखा कि इससे ना बहुत आगे बढ़ जाते हैं। मैं देखती थी कि जब मैं कॉलेज में पढ़ा करती थी तो जगदीश भाई कमलानगर सेंटर पे रहा करते थे, तो मैं वहां पे बहुत जाया करती थी, क्योंकि मेरा जो कॉलेज था वो करीबन 10 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे था। तो मैं देखती थी जो भी मेरा पीरियड फ्री होता था ना, तो मैं वहां चली जाती थी। तो मैं जगदीश भाई को कहती थी कि मैंने कहा भाई साहब कोई भी राइटिंग वर्क है ना आप मुझे दे दिया करो। तो वो मुझे कहते थे कि उर्मिल तुम कैसे करोगी, क्योंकि मेरे साइंस सब्जेक्ट्स थे, मैंने एमएससी किया दिल्ली यूनिवर्सिटी से फिजिक्स में, तो आप समझते हैं कितना टफ सब्जेक्ट होता है फिजिक्स, उसमें प्रैक्टिकल्स भी होते हैं। और जब मैं कॉलेज के लिए निकला करती थी तो 2-2.5 घंटे आने में और 2-2.5 घंटे घर पहुंचने में लगा करते थे। और फर्स्ट क्लास हमारी 8:30 बजे शुरू हो जाती थी कॉलेज में, और फिर शाम के 5 बजे तक चलता था। तो आप सोचो मैं घर जाके किस समय पहुंचती होंगी। तो उसके बावजूद भी मैं सीधा सेंटर चली जाती थी, सेंटर से मुरली पढ़ के बाबा से मिल के रिलैक्स फील करती थी, फिर घर जाती थी। और सवेरे जल्दी उठ के सारा काम कर लेना माँ के साथ में, और फिर क्या करती थी, सवेरे 6:15 की बस पकड़नी होती थी। तो मैं क्या करती थी कि थोड़ा जल्दी पहुंच गई सेंटर, और घर में उन दिनों आप समझते 73 के आसपास झाड़ू पोछे बर्तन वाले नहीं हुआ करते थे, सारा काम में मदद करके कि कोई घर में कुछ बोले नहीं। तो वहां जाकर के फिर सेंटर पे पिछले 2 पेज पहले पढ़ लेते थे, और फिर 1 पेज जो था वो बाद में सुन के फिर हम अपने कॉलेज के लिए निकल जाते थे। और फिर जो फ्री पीरियड होता था तो उसमें जगदीश भाई मुझे कहते आप कब करोगी, कैसे करोगी, मैंने कहा भाई साहब वो मुझे सोचना है। तो मैं जब काम लेके जाती थी तो पहले अपने कॉलेज का काम करती, और करने के बाद 11-12 भी बच जाते कई बार, क्योंकि प्रैक्टिकल्स 25-25, 30-30 पेज का एक प्रैक्टिकल हुआ करता था बड़ी फाइलों का। उसके बाद फिर मैं क्या करती थी, जो जगदीश भाई मुझे राइटिंग वर्क दिया करते थे, एक सुधा बहन रशिया और एक मैं, दोनों हम लोग भाई साहब को राइटिंग वर्क किया करते थे, जो ये ज्ञान अमृत और वर्ल्ड रिन्यूअल मैगजीन्स निकलते थे। तो मेरा कहने का भाव ये है कि हम नहीं कर सकते, हो नहीं सकता, मुश्किल है, ये सब हमारी अपनी वोकैबुलरी है। जो बाबा ने कहा है कि ये नहीं होनी चाहिए, वेयर देर इज विल देर इज ऑलवेज अ वे, तो इसलिए हमें अपने आप को बड़ा स्ट्रांग बनाना है, और स्ट्रांग बनाने के लिए ही हम यहाँ पर आए हैं। तीसरा जो मैं एक समझती हूँ कि आगे बढ़ने में जो बहुत मदद करता है, कि बाबा ने जो हमें प्रिंसिपल्स दिए हैं लाइफ में, जैसे बाबा कहते हैं कि बच्चे कोई बात तुम्हारे सामने आती है ना तो आप प्यार से कहो मेरा बाबा, बाबा प्लीज आप आ जाओ, अब मेरे से होता नहीं है, कोई भी किसी भी तरह की बात है हम बाबा को कह दें। तो ये बाबा ने हमें प्रिंसिपल्स दिए हैं, पर हम लोग क्या करते हैं वहां पे अपने मन की बात को लगा देते हैं। हम लोग कहते हैं कि नहीं बाबा तो कहता है लेकिन शरीर दर्द है तो दर्द है ना, दर्द तो है मालूम है। अब देखो दीदी कितनी उम्र की हैं, आपने शायद कल नोट किया हो, मैंने कोशिश की जब वो कैंडल लाइटिंग के लिए आ रही थी कि मैं उनका हाथ पकड़ लूं, लेकिन उन्होंने कहा नहीं नहीं, और अपनी बोतल पानी की उठा के खुद चल पड़ी। मैं एक बार कहां थी, साउथ अफ्रीका में थी, तो मैंने देखा कि वहां पे एक 85 साल की बुजुर्ग लेडी, स्विस लेडी थी, वो आई और फटाफट किचन में गई और सामान निकालने के लिए एकदम ऊपर सीढ़ी चढ़ गई। कहते हमारी वोकैबुलरी में ही नहीं है कि कोई बूढ़ापन भी कोई चीज होती है, कोई चीज नहीं है उनके वोकैबुलरी में। तो इस तरह से बाबा के बच्चे विदेशों के अंदर अगर हम पुरुषार्थ करके देखें ना, यहाँ पर तो बहनें अलाउ कर देती हैं कोई बात नहीं आप आगे जाके करना, फिर हम दोबारा कह देते हैं कि हमें जाना है वहां पे। तो बहनें समझाती तो हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि बाबा ने हमें कर्म फिलॉसफी समझाई है कि अगर हम धारणाओं पे नहीं चलेंगे और हम प्रेशराइज करके अगर हम किसी प्रोग्राम में आ जाएंगे तो बाबा ने क्या बोला है, क्या बोला है, उससे हमारा अकाउंट क्रेडिट होने के बजाय डेबिट ज्यादा होता है। तो इसलिए हमें जो बाबा ने स्पिरिचुअल प्रिंसिपल्स दिए हैं उनको अप्लाई करना अपने लाइफ में। बाबा ने कुछ भी कहा है कि बच्चे मैं बैठा हूं, मैं देख लूंगा कारोबार को, अगर सेवा का सेंटर पे बुलावा आया है तो एकदम जी हम जरूर आएंगे। आप देखना बाबा कैसे आपको मदद करता है, कैसे मदद करता है। कई बार हम लोग कह देते हैं हमें देखो कहीं रिश्तेदारी में जाना होता, हम एकदम टाइम निकाल लेते हैं, छुट्टियां भी सारी वहां के लिए डेडिकेट करके रखते हैं। मैंने जितनी भी कैजुअल्स और अनलीव होती थी ना सारी बाबा के लिए रखी, और बैंक में लोगों ने नाम रखा हुआ था कि अगर उर्मिल बहन नहीं आई है तो इसका मतलब वो माउंट आबू में होगी, सब लोग यही कहते थे। हर महीने दो महीने के बाद मैं किसी ना किसी को यहाँ पे लेके आ, उन दिनों इतना मुश्किल होता था किसी को लेके आना, मुझे राम श्लोक भाई जनरली ऊपर होते थे उन दिनों, तो वो जनरली कहा करते थे कि आप दिल्ली गई भी हो या अजमेर से वापस आ गई हो, ऐसे बोला करते थे। तो जितना बाबा के प्रिंसिपल्स पर हम चलते हैं कि बाबा ने कहा है कि मुझे ये करना है तो मुझे ये करना ही है। अभी जैसे थोड़े दिन पहले बाबा ने एक बहुत सुंदर बात बोली थी कि बच्चे विचार सागर मंथन करो लेकिन ज्ञान का करो, ज्ञान का करो। हम लोग कई बार सेवा का, टीचर्स बहने खासकर, हम लोग सेवा का मंथन ज्यादा करते हैं लेकिन ज्ञान का मंथन कम करते हैं। इवन योग में भी कई बार सेवा का मंथन चलने लगता है, तो इस पे हमें ध्यान देना है। तो मैंने देखा कि जितना हम बाबा के यज्ञ में अपने आप को ऑफर करते हैं, तो हम लोग 73 से जब लौकिक में भी रहते थे तो इतना जाने जाते थे, इतना जाने जाते थे कि मैं ऑल ओवर द वर्ल्ड सेवाओं के लिए लौकिक से ही जाती थी, लौकिक से। और जब यज्ञ के अंदर फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुए थे मीडिया के प्रोग्राम्स जो दूरदर्शन पर, तो शीलू बहन के बाद वो मेरी रिकॉर्डिंग्स ली गई थी। क्यों ली गई थी? क्योंकि यज्ञ में इतना रेकॉग्निशन था, इतना रेकॉग्निशन था कि ये भले लौकिक में बंधन के कारण रहती हैं, लेकिन ये यज्ञ में ऐसे हैं जैसे समर्पित बच्चे होते हैं। तो इस प्रकार से जब हम लोग चले तो आज हम देखते हैं कि एक आई ऑफ रेकॉग्निशन है बड़ों के मन में। इवन मैं जाती थी जब जगदीश भाई के पास तो वो सीट से उठ के खड़े हो जाते थे, कहते उर्मिल मैं आपको सल्यूट करता हूँ, आप किस तरह से सारी सेवाओं को मैनेज करती हो, किस तरह से आप कोई वीआईपी यज्ञ में लाना होता है तो आप कैसे पकड़ के ले आती हो, दैट इज रियली रिमार्केबल। तो बहुत अप्रिशिएट करते थे, और मैं यहाँ आती थी तो बहुत बड़े आगे रखते थे। तो करते करते हम यज्ञ में घुसते चले गए और घुसते घुसते इतना ज्यादा बड़ों के नजदीक आ गए कि एकदम रेकॉग्निशन हो गया। क्योंकि लौकिक में जब हम चले थे ना तो बहुत ज्यादा बंधन थे, तो उस समय निकलने नहीं देते थे परिवार वाले यज्ञ के अंदर। तो हमारे अंदर में पूरा था कि हम बाबा के हैं, तो इसलिए जॉब करते रहे, काफी टाइम जॉब करना पड़ा। तो जॉब करते करते जब उनको लगा कि अब तो ये अपने आप में सेटल हो जाएंगे और अब तो इनकी पूरी दिखाई पड़ती है लगन, तो मैं ये नहीं चाहती थी कि कोई घर में किसी को परेशानी हो और कोई डिससर्विस हो। क्योंकि जिन वीआईपीस को हम बुलाने के लिए बाहर जाते हैं, अगर वो घर में अवेलेबल है, अगर हमने उनकी डिससर्विस कर दी तो वो फिर संस्था का नाम हम बदनाम कर देंगे। तो इसलिए अपनी तरफ से बहुत ज्यादा मेहनत करते थे, बहुत ज्यादा करते थे, घर में भी करते थे, भाई लोग आते थे, जब भाभियां आती थी तो उनके लिए भी इतना करते थे कि बात मत पूछो, ताकि उनको कहने का मौका ना मिले। तो इससे हमने देखा कि क्या हुआ कि हमने जितना अपने को तपाया, चाहे वो तन से सेवा करके तपाया, जब मनसा सेवा के द्वारा रात को दो दो बजे तक उठ के तपस्या करते थे, हमारे बंधन कट जाए, बंधन कट जाए। तो बाबा ने भी जब अव्यक्त बाप दादा से हम साकार में मिले थे, साकार सॉरी अव्यक्त में मिले थे, तो तो बाबा ने उस समय कहा भी था कि बच्ची ने लौकिक को अलौकिक बनाने का पुरुषार्थ बहुत अच्छा किया है, बाप दादा आपकी सेवा से बहुत खुश है। क्योंकि जब यज्ञ में डॉक्टर एमडी गुप्ता फैमिली जो निकली, जो सबसे बड़े लौकिक भाई थे, तो मैंने देखा कि ये यज्ञ के अंदर बहुत सेवाओं के निमित्त बने और ये फर्स्ट यज्ञ की वीआईपी फैमिली थी, उस सेंस में कि सारे ही एक अच्छे प्रोफाइल वाले थे। तो ये एक यज्ञ में बड़ा, यज्ञ ने उनको भी बहुत अच्छे से सस्टेन किया। फिर हमारी जो एक लौकिक छोटी बहन है, जो भी बहुत यूनिवर्सिटीज की सेवाएं करती है, थॉट लैब के उसमें और एजुकेशन विंग की जोनल कोऑर्डिनेटर भी है, तो मैंने देखा कि वो भी साथ में निकली। और एक वीरेंद्र भाई जो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, तो वो भी सेवाओं के निमित्त बने। तो इस तरह से अगर हम लोग बाबा के यज्ञ के अंदर आगे बढ़ना चाहते हैं तो यज्ञ में घुसो। घुसो इस बात में नहीं कि वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रही है, एक दूसरे से अनुभव पूछो। जितना अनुभव पूछेंगे उतना हम लोग पावरफुल बनते चले जाएंगे, क्योंकि ये जो सीनियर्स हैं इनमें बहुत पावर है। पहले मैं सोचा करती थी शायद नहीं, लेकिन मैंने देखा इनके पास जो अनुभव है वो शायद हम लोग परिवार वालों के पास अनुभव नहीं है। और कई बार हम सोच लेते हैं कि ये लोग तो आराम से बैठे हैं, सब कुछ पका पकाया मिल जाता है, फैमिली में तो करना होता है, क्या हम लोग 45 साल की उम्र तक हम घर में रहे तो क्या हमने कुछ नहीं किया होगा परिवार में? नहीं किया होगा। कितना मरना पड़ता था उनके लिए, कितना करना पड़ता था, लेकिन उसको खुशी खुशी से करते थे। तो हमने देखा कि हम यज्ञ में एक अपनी सीट बना गए। तो इसलिए हमें इन बातों के ऊपर, छोटे छोटे टिप्स हैं, बाबा की धारणाएं हैं, जो भी मर्यादाएं दी हैं, अपना जीवन मर्यादा युक्त होना चाहिए। क्योंकि हमारा एक कुल है, ब्राह्मण कुल, और कुल की कुछ मर्यादाएं होती हैं। जैसे किसी के घर का नियम है कि सब सवेरे जल्दी उठ जाते हैं, और उस घर में कोई बहू आ जाए वो सोती रहे 7-7-8 बजे तक, और सबका ऑफिस जाने का टाइम हो जाए, तो थोड़े दिन के बाद उसको क्या समझाने दी जाती है कि देखो ये हमारे कुल की मर्यादा नहीं है, तो आपको हमारी मर्यादा का ध्यान रखना होगा। हमारे घर की मर्यादा है कि ससुर के खाए पहले आप भोजन नहीं कर सकते, तो यहां भी हमारी कुछ मर्यादाएं हैं, बाबा को खिलाए बिना हम भोजन नहीं खा सकते, तो हमें इसके ऊपर ध्यान देना। हम लोगों ने बनाया, बाहर का भी खा लिया, फिर हम कहते हैं हमें भट्टी में जाना है, बाहर का भी खा रहे होते हैं, ना अमृत वेला करते हैं, ना दृष्टि का पता होता है, तो फिर आने से हमारा बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है, हमारी उन्नति नहीं होती है। तो इसलिए बाबा जो अमृत वेले हमें पढ़ाई पढ़ाते हैं ना, तो इस पढ़ाई को कैसे भी करके, ये मेरा पर्सनल टाइम है, चार्जिंग टाइम है, जैसे मैं अपने मोबाइल को चार्ज करता हूँ, ऐसे मुझे अपने आप को रोज चार्ज करना है। मेरी बैटरी चार्ज हो गई, पावर बैंक मैंने अपने साथ उठा लिया, जो पॉइंट्स मैंने नोट किए, फिर उसको हम सारे दिन इम्प्लीमेंट करें, तो आप देखना थोड़े समय में बहुत आगे निकल जाएंगे, बहुत आगे। सारी चीजें साइड पे, बाबा की स्टडी